यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध 13वें अध्याय 21वें श्लोक से उद्धृत है, जो कि 5 दिसंबर 1993 में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा चंडीगढ़ में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 13 टेक्स्ट 21 पितृभ्रातरात्पुत्रे विगतम वयम आत्मचाजराया कर्तागेहम उपाससे। ओम ज्ञान तिमिरंदा ज्ञान मंजना शलक्या चक्षुर्मिलितनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवनश्च श्रीरूपां सगजतं सहागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सहागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव छवि गौर भक्त।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
बीते प्रातः सुरत पुत्रा अतस्ते विगतम वयम आत्मा चा जलाया ग्रस्ता पद गे हम उपास से। तो ये श्लोक में विदुरा अपने भाई धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। इस अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र घर छोड़ते हैं। तो विदुरा जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारे पिता भाई शुभ चिंतक पुत्र सबका देहांत हो गया है और तुम भी बूढ़े हो गए हो। अपनी जिंदगी का ज्यादा समय तो बीत चुका है और आप बुढ़ापापन के कारण तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं वो भी ठीक नहीं चल रहे और तुम किसी और के घर में निवास कर रहे हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सब मारे गए थे, कोई भी नहीं बचा था जो वो और गंधारी और युधिष्ठिर, क्योंकि बड़े महान भक्त थे वो। साधारण समाज में तो हर व्यक्ति दूसरे से बदला लेने का प्रयास करता है, जैसे कि अगर हम किसी को कष्ट दें, जब उसको मौका मिले हमें कष्ट देने का वो तो पूरा लाभ उठाता है, उसको खुशी होती है हमने बदला ले लिया। जब तक हम बदला नहीं ले चांदी से नहीं रहेंगे, है ना। अहंकार के कारण लोग ऐसे ही कहते हैं, पर भक्तों की इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती। भक्त जो है उनका कोई शत्रु नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव, उनके पिता का देहांत तो छोटी सी आयु में ही हो गया था जब वो सब छोटे बच्चे थे, और धृतराष्ट्र उनके बड़े बेटे दुर्योधन उनके घर में ये सब पले, पर उनके राज्य को प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने कोई ट्रिक चापलूसी का कार्य नहीं छोड़ा। पूरा प्रयास करा कि किसी न किसी प्रकार ये पांडव का देहांत हो जाए और ये राज्य जिन पर इनका अधिकार था वो राज्य उनके बेटे को प्राप्त हो जाए। असल में धृतराष्ट्र को पता था कि ये गलत कर रहे हैं, और उनका इतना मोह था उनके बेटों के प्रति, खास करके दुर्योधन के प्रति, कि वो इस कारण अंधे हो गए थे। तो उनको पता था, उनको ये भी पता था कि इस कुरुक्षेत्र युद्ध में सबका देहांत हो जाएगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि धृतराष्ट्र की पूरी औलाद लगभग सबका देहांत हो गया पत्नी के अलावा, तो उन्होंने कहा युद्ध की समाप्ति पर आपके लिए अभी तक आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं बचा, हम आपको पूरी सुविधा देंगे। तो उन्होंने एक बड़ा विशाल महल दिया युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को निवास करने के लिए, और हर प्रकार की सुविधा दी, नौकर दिए जाकर सब सुविधा। तो धृतराष्ट्र इतने आराम से रह रहे थे अपने नए घर में, तो वो सोचने लगे, नहीं तो हमेशा ही अभिलाषा थी कि मैं राजा बनूं, पर पहले राजा नहीं बन पाया, अब राजा बनने का मौका मिल गया। तो उस प्रकार की बुद्धि से रह रहे थे इस महल में, जैसे कि वो राजा थे युधिष्ठिर महाराज नहीं, और वो अच्छे महल के प्रति बहुत ही आकर्षित हो गए थे। तो विदुरा जब आया उनको मिलने, तो विदुरा ने देखा कि मेरा भाई सब उसकी औलाद सब का देहांत हो गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, पर वो सोच रहा है अब मैं राजा जैसे रह रहा हूं, तो इसलिए बड़े कठोर शब्दों में अनेक श्लोकों में इस अध्याय के विदुरा जी धृतराष्ट्र को ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार वो मूर्ख है। मूर्ख है, भौतिक दृष्टि से तो अंधे थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो ये नहीं देख सकते कि उनके सामने सबका देहांत हो गया है और उनका भी होने वाला है। पर वो सोच रहे हैं नहीं नहीं, अब तो मैं बड़े सुविधा के साथ ये विशाल महल में रहूंगा जिंदगी भर। तो ये है माया का प्रभाव, हर तरफ से हम देखते हैं दुख है कष्ट है, पर हम ये सोचते हैं ये कष्ट हमारे तक नहीं पहुंचेगा, दूसरों तक पहुंच गया है पर हमारे तक नहीं पहुंचेगा। जैसे कि एक चोर जानता है कि बाकी सब चोर पकड़े गए हैं, पर वो क्या सोचता है, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मेरे पास एक खास तरीका है जिससे मैं बच जाऊंगा, ठीक है ना। तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति यही सोचते हैं कि किसी न किसी प्रबंध के द्वारा वो अपनी आयु को बढ़ा लेंगे, वो अपने आप को कष्टों से बचा लेंगे और वो सदा सुखी रहेंगे। तो जो विदुर जैसे भक्त हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है क्या कि जो धृतराष्ट्र के समान अंधे हैं उनको बुद्धि देने के लिए। अगर विदुर जैसे सारे भक्त भी चुप रहे तो फिर धृतराष्ट्र जैसे पूर्वी व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस अध्याय में विदुरा जो है बड़े कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कई बार जब हम लोग प्रचार करने जाते हैं और असलियत का प्रचार करते हैं जरा कठोर शब्दों से, तो लोग कहते हैं तुम्हारे बहुत अहंकार है, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो साधु का कर्तव्य यह है कि हमेशा वो सच को बोले। एक समय हमारे गुरुजी ने कहा किसी को, जब उसने ऐसे कहा कि स्वामी जी को इतने कठोर शब्द नहीं उपयोग करने चाहिए, उन्होंने कहा कि जब आपके फोड़ा हो जैसे पस हो, तो पस निकालने के लिए फूंक मारने से पस नहीं निकलेगी, आप केवल फोड़े को दबाओगे जब भी पस निकलेगी। तो इसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं उनका यह कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से हर चीज का उपदेश दिया है, उसी प्रकार वो उपदेश को आगे रखें समाज के समक्ष। तो विदुरा बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि किस प्रकार से वो मूर्ख हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे हैं। तो हम भारत में भी देखते हैं, दूसरे देशों की बात ही छोड़ो, जहां के लोगों को बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान किसी न किसी रूप से प्राप्त होते आया है, कि बुढ़ी आयु में भी हम हमारी कुर्सी नहीं छोड़ते, कुर्सी नहीं छोड़ते बुढ़ी आयु में, बुढ़ी आयु में भी सेठ ने दफ्तर जरूर जाना है, दफ्तर चले जाने, दफ्तर जाएंगे एक घंटे के लिए। कई बार हम लोगों को मिलते कहते हैं हमारे पिताजी दादाजी क्या उम्र है, 80 साल से अभी भी रोज दफ्तर जाते, कितनी अच्छी। तो दफ्तर जाना जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति वो लक्ष्य नहीं है। भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। 80 साल में भी सेठ जी दफ्तर जाते हैं, ये पूरे दुनिया को ढंडोड़ा रहे हैं, बस भक्ति करते हैं या नहीं उसके विषय में उनको कोई चिंता नहीं है। तो ये है समाज का दुर्भाग्य। तो विदुर जैसे जो भक्त हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो धृतराष्ट्र जैसे जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति अंधे हैं उनकी अज्ञानता को दूर करें। इसीलिए भक्तों को ये कहा जाता है प्रचार करो। इसलिए भक्तों को ये कहा जाता है कि सीखो भगवान का क्या उपदेश है और यही उपदेश आगे सिखाओ। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे? अगर हम खुद धृतराष्ट्र जैसा व्यवहार करेंगे हम दूसरों को क्या कहेंगे? तुम धृतराष्ट्र का जैसा व्यवहार मत करो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया कि हर केंद्र में सुबह के समय भागवत का ध्यान, शाम के समय भगवद गीता का ध्यान। क्योंकि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ये समझने में आता है कि भगवान का क्या उपदेश है। और प्रभुपाद जी ने तो हर श्लोक को देखकर लगभग जो अवश्य महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन पर अपना तात्पर्य भी दिया है, जिसमें उन्हीं विचारों को और सरल शब्दों में समझाया है। केवल प्रभुपाद जी ने अपने तरफ से नहीं समझाया, जो महान आचार्य हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, जो उनके टीके थे भागवत के ऊपर, उनको भी पढ़कर जो महत्वपूर्ण बातें थी उन टीकों में उनको भी ग्रहण करके साथ में अपने विचारों को जोड़कर प्रभुपाद जी ने इन तात्पर्यों का वर्णन किया है। तो जब हम इन तात्पर्यों को पढ़ते हैं अब पूरी परंपरा के जो महान आचार्य हुए हैं उन सब के जो विचार थे इन श्लोकों के ऊपर उनके निचोड़ को भी हम समझ पाते हैं। तो जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं जब हम समझते हैं क्या है भगवान की वो भगवान की ये इच्छा। एक समय हमने प्रभुपाद जी से पूछा कि भारत में बहुत से लोग कहते हैं गीता छापो केवल श्लोकों के साथ, तात्पर्य के बिना, तात्पर्य के बिना आप समझ ही नहीं सकते भगवान क्या कह रहे हैं। तो आज अगर ध्यान से देखा जाए पूरी प्रजा लगभग 99.99% धृतराष्ट्र के समान है, ठीक है ना। प्रभुपाद जी अमेरिका गए बुढ़ी आयु में बिल्कुल अकेले, वो एक दो भक्तों ने आगे प्रचार किया, इस प्रकार सारे विश्व में पहुंच गया। जैसे कि प्रभुपाद जी अमेरिका का रूस में गए थे 1971 में गए थे तो केवल थोड़े दिनों के लिए, एक भक्त बना उदा प्रभुपाद जी के जो नौकर थे वो जा रहे थे दूध लाने के लिए। प्रभुपाद जी होटल में ठहरे हुए थे तो नेशनल होटल में, तो श्याम सुंदर था उनके सेक्रेटरी का नाम, तो होटल में तो प्रभुपाद जी नहीं खाते थे क्योंकि वहां तो सब मांस वगैरह बनता है, तो उन दिनों में दूध मिलना कोई बहुत कठिन था। तो प्रभुपाद जी का एक सेक्रेटरी दूध की तलाश में जा रहा था। आजकल तो ज्यादा रूसी लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं पर उन दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखाते ही नहीं थी सरकार नहीं सिखाती थी क्योंकि उनको डर था कि ये लोग वॉइस ऑफ अमेरिका बीबीसी रेडियो का रेडियो वगैरह सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोग कम्युनिज्म से लोगों को दबा रहे हैं। तो उन दिनों में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते थे। तो ये श्याम सुंदर रास्ते में पूछ रहा था लोगों से कोई दूध की दुकान है क्या यहाँ, तो ज्यादा तो लोगों को समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रहा है। पर एक लड़का था जिसे थोड़ी सी अंग्रेजी, जो इंटरप्रेटर जिसे अंग्रेजी आती थी और जिसकी योगा में रुचि थी, तो अचानक वो मिल गया सड़क में। उससे प्रभु श्याम सुंदर ने पूछा यहाँ कोई दूध की दुकान है जब दूध मिल सकता है? तो उसने कहा यस आई कैन हेल्प यू। तो उसने कहा मैं तुम्हें दूध की दुकान में ले जाता हूँ। तो दूध में दुकान ले जा रहा था चलकर, तो रास्ते में थोड़ी चर्चा शुरू हो गई और रशियन लोग भी जब अंग्रेजी बोलने के लिए कोई मौका मिले किसी से तो बड़े खुश होते हैं अंग्रेजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जरा बात कर रहे थे वो लोग रास्ते में बात करते करते ये पता लगा कि ये लड़के की रुचि है योगा में। तो श्याम सुंदर ने उनसे कहा मेरे साथ मेरे गुरु हैं जो कि योगा के टीचर है। ये पश्चिम देशों में तो हम भक्ति योग का प्रचार करते हैं तो हम योग के नाम से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसने कहा मैं उनको मिल सकता हूँ। जरूर प्रभुपाद जी की तो इच्छा थी कि किसी प्रकार से भक्ति का बीज वहाँ स्थापित हो जाए। तो फिर दूध खरीद कर श्यामचंदर उस व्यक्ति को वापस प्रभुपाद को मिलने लाया होटल में। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें उपदेश दिया, अगले दिन फिर उपदेश दिया, तीसरे दिन फिर दिया। शायद निकलने से पहले प्रभुपाद ने उसको दीक्षा भी दे दी। तीन दिन आजकल तो एक साल दो साल इंतजार करनी पड़ती है दीक्षा के लिए, और प्रभुपाद जी ने तीन चार दिन में ही दीक्षा दे दी उसको और उसको कहा जाओ तुम प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। हालांकि उसको बहुत कम ज्ञान था, तीन दिन में आप कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर उसे ये पता लग गया कि कृष्ण इज सुप्रीम लॉ। और उनको प्राप्त करने के लिए क्या हरे कृष्ण मंत्र क्या उसके पास, ये दो चीजें केवल उसे पता थी। तीन दिनों में आप कितना ज्ञान पा, उन दिनों में तो कोई ग्रंथ भी नहीं थे हमारी रूसी भाषा में। तो केवल इतना ही उसके हृदय में बिठा दिया प्रभु ने, क्या कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान परम भगवान है और कलियुग में उनके प्राप्त करने का क्या साधन है, हरे कृष्ण मंत्र बस। और तो उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो उसने एक वक्त का प्रचार किया, एक ने दूसरे किया, दूसरे तीसरे का किया। फिर हंसते हंसते कृष्णा बुक वगैरह मंगाई अमेरिका से, कृष्णा बुक का कृष्णा बुक की, क्योंकि मैं 1976 में रख दिया था, वो कृष्णा बुक की तस्वीरें दिखाता था सबको अनंत प्रसाद को, क्योंकि लोग तो पढ़ नहीं सकते थे। तो कृष्णा बुक में पुरानी कृष्णा बुक में 60 फोटो थी, तो सबको इकट्ठा करके दिखाता था जिस फोटो, और आपकी तरफ से समझा रहा था। जैसे ऐसे ऐसे भक्त बनने लगे, और अब देखो देश में लगभग 200 केंद्र हैं। तो हम भक्तों को विदुर के समान इस उपदेश को हमने आगे बढ़ाना है, और हमें दूसरों को प्रचार करना है। जब आप प्रचार करने जाओ तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति हमें आदर के साथ स्वागत करेगा, फिर प्रचारक कभी सफलता नहीं प्राप्त करेगा। जब प्रचार करने जाओ बिल्कुल निम्रता के साथ हमें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, त्रिनाद भी सुनी चेना तरूर भी साई सुन हमारी न मना देना केतना भी सुनहारी। हाँ, घास के पत्ते से भी अपने आप को ज्यादा पतित मानो। ये नहीं हम अभी PhD है, IIT के ग्रेजुएट है, हमें पूरा आदर मिलना चाहिए, कम नहीं जाए। क्योंकि जब आप प्रचार करने जाओ तो कई आपका अपमान करेंगे, कई आपको जूता मारेंगे, और एक दो आपका स्वागत करेंगे। तो प्रचार, क्योंकि ज्यादा लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। भगवान नित्यानंद जी जब चैतन्य महाप्रभु जी के साथ ही हैं, बालराम जी के अवतार हैं, वो जब शराबी और जगाई बताए तो शराबी भाई थे जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उनको प्रचार कर रहे थे, उन्होंने तो पत्थर उठाकर मारा। कहा क्या तुम हमें रोज कहते हो हरे कृष्ण का मंत्र करो, चुप रहो, और पत्थर मारो। जब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो भगवान के प्रचार के करते हुए हमें कठिनाई के सामने से डरना नहीं चाहिए। अगर हम ये सोच के जाए हमारा अपमान हो जाएगा, हम नहीं जाते ना, फिर आप कभी सफल नहीं होंगे भगवान के उपदेश देने में। तो निम्रता के साथ आदर अपमान का सोचे बिना, ये सोचते हुए केवल कि हम प्रचार में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पूरी गुरु परंपरा का ये आदेश है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस पर बल दिया, क्योंकि हमारे गुरु महाराज इस पर बल दे रहे हैं। क्या प्रचार? भगवान क्या कहते हैं, कौन है सबसे प्रिय भक्त? वो जो मंदिर में पूजा करता है, जो रसोई बनाता है, जो केवल मंदिर सफाई करता है, सब प्रिय है, पर सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो परिश्रम करके प्रचार करता है। क्यों? क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं हम लोगों को ये बता रहे हैं क्या, कि जिन परम पिता से उन्होंने संबंध तोड़ दिया है वापस उनके पास जाए। जैसे कि साधारण स्थिति में अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए और आप वो बच्चे को ढूंढ कर ले आओ वापस, तो माता पिता कितने आभारी होते हैं, बहुत आभारी आए। तो उसी प्रकार परम भगवान भी भक्तों के आभारी होते हैं। किन भक्तों के? वो नहीं जो बहाना देते हैं प्रचार से बचने के लिए, वो नहीं कि जब उनको बोलो प्रचार करो दस बहाना दे दो, उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं तो भगवान उनसे खुश नहीं होते। खुश उनसे होते हैं जो कुछ त्यागते हैं उनके प्रचार के लिए, जो कुछ त्याग करते हैं ये लोगों को स्थापित करने के लिए, लौटो अपने परम पिता के पास। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना बल दिया प्रचार, इतना हर दर्शन हर प्रवचन हर समय प्रभुपाद जी इसी विषय पर बल दे, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, भक्तों के खून में ये डाल दिया। इसलिए जैसे आप ये पोस्टर देख रहे हो प्रभुपाद जी उस विश्व में सारे भक्त अलग अलग स्थानों में ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद जी का आदेश है। अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो जाओ प्रचार करो। तमाम संसार में भी दो प्रकार के भक्त हैं, जो प्रचार से डरते हैं और कई जो प्रचार के लिए उत्साहित हैं। तो हमें ये सीखना है कि हमें प्रचार के लिए कैसे उत्साहित होना चाहिए, हमें कैसे प्रचार करना, हमें प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों का वितरण करने का, लोगों को किसी न किसी प्रकार से ये शिक्षा देने का जिसके द्वारा वो ये समझ सके कि आप हो। लोग हंसेंगे कहेंगे क्या तुम चीजें छोटी उम्र में जा रहे हो, उसका कि भारत में क्या 80 साल तक आप छोटे होते जवान होते भक्ति के लिए, रिटायरमेंट ले लिया और भक्ति के लिए आप जवान हो। सरकार ने कह दिया भाई अभी कुर्सी खाली करो, इंडियों ने नहीं कहा, इंडिया कहते हैं अभी तुम कुर्सी खाली मत करो अभी तो तुम जवान हो, समाज ये कहते नहीं नहीं तुम जवान हो अभी बैठे रहो यहाँ। सो हाँ अभी अंत तक मैं आपको जवान ही समझते हैं। तो हमें विदुरा जैसा प्रचार करना चाहिए, लोगों के ग्रंथों का ग्रंथ देने चाहिए। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण पर क्यों बल दिया? क्योंकि इन ग्रंथों के द्वारा लोग समझ सकते हैं बार बार क्या क्या ना क्या। आप कृष्णा का उपदेश दो, 3 दिन में लोग भूल जाएंगे आपने क्या बोला। अगर ग्रंथ सामने हो तो बार बार पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, और जो श्रद्धावान है वो भक्तों का सहयोग लेंगे इन ग्रंथों को समझने के लिए, और जितना वो ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझेंगे क्या। हाँ हम तो मूर्ख थे जो हम भौतिक जीवन के पीछे भाग रहे थे, हमारा तो कुछ और लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लोग इसको नहीं स्वीकार करें वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो विदुरा के चरणों में हमें सबको चलना चाहिए और विदुरा जैसे महान महात्माओं की आशीर्वाद मांगनी चाहिए कि हम सभी प्रचार के क्षेत्र में सफल हो, लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए और लोगों के हृदय में भक्ति के बीज को स्थापित करने के लिए। हरे कृष्ण।